अभी हम लोगों ने ब्रह्मा जी की एक रात पर्यंत इसको नाचने की शिक्षा दी। हम लोगों ने इसे कीर्तन करवाया, कीर्तन का स्वर बदलाया, कृष्ण को पूजा का खूब अच्छा लगता है। राधा जी को रूपत इत्यादि बहुत दोनों गाड़ी है और बीच बीच में कृष्ण का सुधार करती है। कृष्ण पंचम स्वर से गाते हैं और गोपियां क्या करती हैं, कोई सप्तम स्वर से गा सकती है। जरा और आगे बढ़ो तो कृष्ण आवाजते आवाजते सप्तम स्वर आवाजते समय में थोड़ा सा गला चाहिए, अब अभी पक्का नहीं हुआ, इसलिए कृष्ण को पक्का कर रही है, परिपक्व कर रही है। नित्य में गोपियां इतनी तेजी के साथ में नृत्य करती हैं जो कृष्ण उतना नहीं कर पाते। वो नृत्य देखते देखते अपना नाचना बंद कर देते हैं, गोपियों का ही नाचना देते हैं, अपना नृत्य बंद कर देते हैं। इस तरह से एक ब्रह्मा की एक रात माने कितने करोड़ों वर्ष तक एक रात का रात था, उसमें जब गोपियों ने सब शिक्षा दे दी, जब कृष्ण आए अंत ध्यान होने के बाद में, तो एक गोपी ने पूछा, अच्छा ये तो बतलाओ, एक आदमी प्रेम करता है तो दूसरा व्यक्ति उसको प्रेम करता है, और एक आदमी प्रेम करे चाहे ना करे कि तो एक व्यक्ति उसी को प्यार करता है, जो प्रेम नहीं करता उसे प्रेम करते हैं, और एक आदमी प्रेम करे और ना करे उसको कोई किसी को प्रेम नहीं करता। तो महोदय आप बतलाइए आप उनमें से कौन से हैं, विस्तार के साथ में बतलाया, हम खूब संक्षेप नहीं बतलाया। कृष्ण ने देखा कि ये हमारे सब कौन बैठे हैं, शिक्षक एक साथ में कितने सब शिक्षक बैठ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं। कृष्ण शर्माते हुए कुछ मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, बड़ी सुंदर दुर्भा, और गोपियां कुछ मुस्कुरा करके देख रही कि क्या उत्तर देता है। कृष्ण ने कहा जो प्रेम के बदले प्रेम करता है और यह इच्छा करता है कि हम सभी प्रेम करें, तो इसमें ना तो प्रेम है ना धर्म है ना सौहार्द है, कुछ भी नहीं, ये सीधा बनी आगे ली है, इसका कोई ये कुछ भी है, इसमें ना तो प्रेम ही है ना धर्म ही है, ये बेकार है। इसलिए भगवान से प्रेम करने में यदि कोई कहता है कि भगवान हमसे प्रेम करें, हे प्रभु बहुत दिनों से आराधना कर आपसे थक गई आप दर्शन दीजिए, तो ये क्या होगा, यदि नहीं कहते हैं तो तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत, तो ये आराधना नहीं, उसके ऊपर नहीं छोड़ो, ये वो क्या करता है नहीं करता है तुम्हारा बस आराधना करना कर सकते हैं, उसे कुछ भी मत मांगो कुछ भी कुछ मत कहो। तो कृष्ण कहते हैं जब प्रेम के बदले में प्रेम करता है तो वो उसका प्रेम नहीं है बनिया के लिए, बनिया अपने दुकान पर माल रखता है, आप गए चाराना का चीज मांगा, उसने चाराना पैसा पहले ले लिया और आपको चाराने में घटिया माल दो आने को दे दिया, पर उसने उपकार किया आपका, या चाराने का माल चाराना ही दिया तो उपकार किया, वो तो पैसा लेकर के दे रहा है, उपकार तो तब होता है जो आपकी दुकान में जाने पर वो बिना पैसा भी आपको चीज दे दे, तो ये तो ठीक था, उसने उपकार किया कुछ भी उसका, इसलिए प्रेम के बदले जो प्रेम करते हैं ये प्रेम नहीं है, ये भजन ही नहीं है, भक्ति नहीं है, अन्य अभिलाषम कोई भी कामना न रखे, संसारी समस्त प्रकार की कामनाओं को दूर रखें, मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, मेरा धर्म है उनकी सेवा करना, मेरा स्वभाव है उनकी सेवा करना। दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, भाई कुछ लोग प्रेम न करे थी तो कुछ लोग प्रेम करते हैं, ये कौन है, माता पिता, बेटा सुपात्र भी हो जाए सुबेटा भी हो जाए मैया बाप इसे प्रेम की, यदि घर से वो अलग होकर के भी चला गया माता पिता को गाली गलौज दे करके भी, तो माता पिता का तू अलग रह के तुम सुखते रहो तुम्हारा कल्याण हो, यही कहेंगे तुम्हारा नरक हो जाए तुम्हारा नाश हो, ये माता पिता कभी नहीं, हाँ ठीक है प्रेम में सौहार्द है और धर्म है। ये कौन है, कृष्ण इशारे से कहे यही तुम लोग हो, मैं प्रेम नहीं करता तो प्रेम करती है, इसलिए तुम कैसी हो? जो प्रेम नहीं करता है वो कौन हुआ? बेटा ना? और जो प्रेम नहीं करने पर भी जो करता है उसमें धर्म भी है, कोई आकांक्षा नहीं है, सहुत्व है, सौम्य बंधुत्व है। इसलिए कृष्ण इशारे से कहें, ये तो तुम्हारे अतिरिक्त जगत में और किसी को नहीं देखता, इसमें तुम ही रुको। तीसरा, जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करता और जो प्रेम नहीं करते उनके तो बात भी क्या, ये कौन है? पहले जो आप्तकाम है, आप्तकाम है जिसकी सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो गई या कोई आकांक्षा नहीं रही, वो आप्तकाम है। अरे मैं आप्तकाम नहीं हूं तो तुम कौन है? यदि आत्मकाम होता तो मैं रात में तुमको बंसी से बजा बुलाता, तुम्हारे साथ में रात में नृत्य करता, तुम्हारे पैरों पर गिर करके मनाता, तो मैं तो आपके काम नहीं हूं। दूसरी बात, और लोग जो कि आपके काम और आत्मा रमण करने वाले हैं, वो कोई प्रेम करे ना करे उसको कोई पता नहीं है। सुखदेव जी से प्रेम करो ना करो कोई भी का, लाख मरो कुछ नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि उनका चित्त सब समय कृष्ण में भगवान गर्म रहा। इसलिए कृष्ण से पूछती है, तुम ये आत्माराम हो? तो मैं आत्माराम हूं और नहीं भी। क्यों? तो नहीं इसलिए कि मेरी अंदर में आत्माराम होता तो फिर यहां पर आकर के राजकुमारों के साथ में करने की जरूरत क्या? जब खुदा का दूध पीना मुझे किसी की जरूरत थी? मैं कठाउन से लेकर के खाता हूं, ये किसी की जरूरत थी? इसलिए मैं आत्माराम नहीं। और दूसरे सेंस में हूं तो किस सेंस में हूं? मेरी आत्मा कौन है? सारे विश्व की आत्मा मैं हूं और मेरी आत्मा राधा जी है, उस राधा जी में मैं रमण करता हूं, इसलिए आत्माराम। और दूसरी ध्यान के लिए एक और है, गुरुद्रोही। वो लोग चाहे हजार गुरु की उनको प्रीति करे, कोई दूसरा भी करे, विश्वास भी करे, ये गुरुद्रोही विश्वास घाती होते हैं। ये गुरु लोग गुरु से विद्रोह करते हैं और जगत गुरु कृष्ण है उनसे विद्रोह करते हैं। इन लोगों का सत्संग स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए, इन लोगों को दूर रखना चाहिए। ये भगवान के भजन के नाम पर दूसरों को ये गुरुद्रोह, कभी भी गुरु की सेवा नहीं करते, उनके द्वारा अपनी सेवा करा लेते हैं। ये भी दो प्रकार के हैं, बिना कारण ही गुरु से द्रोह करने वाले, और एक होते हैं कुछ कारण होने पर। यदि कारणवश गुरु ने उसको सुधारने की चेष्टा की और उसको शासन किया माता पिता या गुरु ने, तो उसका गुरु को सीध काटने के लिए भी तैयार हो जाए। और एक अकारण, कुछ लड़के ऐसे होते हैं माता पिता का आदर नहीं करते, बिना कारण ही विवाह हो गया या कहीं उन्होंने रजिस्ट्री करा ली कहीं और विवाह कर लिया, माता पिता से कोई नहीं। और एक होते हैं जो कर्तव्य के माता पिता से द्रोही बन जाते हैं, द्रोहाचरण करने लगे। तो ये लोग भी प्रेम करने वालों को प्रेम नहीं करते। कृष्ण ने कहा कि मैं इनमें से कोई नहीं हूं, न आत्माराम हूं न आपकाम हूं, न पहले वाला प्रेम के बदले प्रेम करने वाला, न गुरुद्रोही हूं, न मैं न अकृतज्ञ हूं, न माता पिता हूं, माता के समान भी नहीं। मैं कह रहा हूं तुम्हारा प्रेम बढ़ाने के लिए ठीक इसी पे तुमको देख रहा था, और जगत में यह दिखलाने के लिए जो गोपी और संकेत समान जगत में और कोई प्रेमी नहीं है, वो प्रेम की बजाय एक चीज को दिखलाने के लिए मैं कहता हूं। इसे तुम हमारी प्रेमिका हो, मैं तुम्हारा प्रेमी हूं, हमारे ऊपर में दोषारोपण तुम्हारा करना उचित है। और साथ साथ में हाथ जोड़ करके ऐसे बोले, न पा रहे हम निर्वस्त साधु, आप लोग साधु सर्विस में हैं, आप लोग हमें पूरी कर दी, आप लोगों ने हमारे लिए जिस प्रकार से पतियों को माता को बच्चों को, सारे समाज संसार को, यहाँ तक कि लोक लज्जा, देश धर्म, गुरुजनों का घर, ये सब कुछ छोड़ करके हमारे पास में चली आई हमारी सेवा करने के लिए। मैं कारण नहीं चुका सकता, एक दो जन्म में नहीं, लाख जन्मों में ब्रह्मा की आई बना पा करके भी मैं ऋण नहीं पा। इसे देवियों आप अपने से ही हमको ऋण से मुक्त कर। यह उन्होंने कहा जब मैं हार मानता हूं और तुम्हारा ऋणी हूं, तो गोपिया बड़ी प्रसन्न हो गई। ठीक है, ठीक, अब तुम खूब ऋण हो गए, अब सचमुच में तुमने इसके द्वारा हमको भी ऋणी बना दिया, अब हम तुम्हारी ऋणी हो गई। क्यों? अपने मुख से ही तुमने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और कहा कि हम तुम्हारा ऋण कभी भी नहीं उतार सकते हैं, यह सत्य बात है, इसको हम भी समझते हैं। जब तुम हमारा ऋण नहीं चुका सकता, कैसे? हम तुम्हारे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानती हैं। जब तो राजी कृष्ण को प्यार कर रही नंद बाबा को छोड़ करके, नंद बाबा को छोड़ नहीं गई, रोहिणी मैया कृष्ण को प्यार करती हैं, वसुदेव जी को छोड़ करके, बलदेव जी को छोड़ करके, घर का काम छोड़ करके करेंगी। गोपियाणी ये कहती है ये सबको जो अपना सामने वाला है, शारीरिक संबंध का और पारमार्थिक ज्योतना जो कुछ है सबको छोड़ करके एक भाव से कृष्ण को प्यार कर रही है। कृष्ण ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत निष्ठ है, उनको लाखों लाखों भक्त हैं, उनको लाखों लाखों की इच्छा पूर्ण करनी होगी, नहीं तो कृष्ण उनके ऋणी हो जाएंगे। किंतु गोपियों का ऐसा है, सब कुछ छोड़ करके अपना धर्म आधार जो कुछ है कृष्ण को चरणों को प्रणाम। जब ही ये सब कथाओं को सुन करके गोपियों की महानता को समझ सके और ऐसे ही कृष्ण की सेवा करने की क्षमता, राधा जी की सेवा, गोपियों की सेवा करने की क्षमता जगे, तब तक ये मालूम का सुना सिद्धांत है। इसे आप लोगों के अंदर में ऐसी ही भावना है कि हम गोपियों के समान कृष्ण की सेवा करें। ऐसे ही आगे आएगा जो स्थितियां दंडकारण्य में रहने वाले और न जाने कितने लोगों का, हम लोगों का भी जब भी कुछ भाव हुआ है, भागवत को सुन करके ही हुआ है। इसलिए भागवत श्रवण का सबसे ऊंचा यही फल है कि गोपियों जैसे कृष्ण राधा जी ने सेवा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो, यही भागवत का कर्म फल है। यही बात है आज का अवसर देने का। बहुत गोपियों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया, घोड़ों के आगे लगाम पकड़ लिया, कोई रथ के आगे गिर गई, कोई मूर्खित हो गई, किसी की कैसी स्थिति में। कृष्ण ने देखा जो मैं उनको कुछ सांत्वना देना चाहिए, इसलिए अपूर्व जी को और बलदेव जी को रथ में रख करके वहां से ठीक उतर आए और गोपियों को सांत्वना देने लगे। मैं कल और मैं तो पात्र जरूर आ रहा, तुम लोग हमारे पर भी विश्वास करो। गोपियों ने सुना कि नहीं और भी बहुत से सांत्वना पूर्वक उनको बात की, पात्र व्याधि में जरूर लौटूंगा। और उसके बाद में अपूर्व वही देखा कि जल्दी से जल्दी आ रहे, इशारा करने राघव देव जी वहीं पर बैठे थे, कुछ नारी की बातें भी याद आए। कृष्ण ने उनको ऐसे ही रोते हुए छोड़कर इधर से उधर करते हुए रथ पर पहुंचे। अपूर्व ने उनके हाथों को पकड़ करके ऊपर फेंक दिया, वो बैठ गए और इधर से इधर उधर से उधर करते हुए धीरे 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 नंद गांव से चले। इसके बाद फिर क्या बता दी आपने कीर्तन में समझ लिया बहुत ही जीवन सूचक वो कीर्तन वो क्या वहीं पर राजू के घर में लौटी और वही पाठी में उद्धव प्यारी बहुत तरह कदम को कारण बस वहीं पर रह कृष्ण धीरे 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 और बोलते अशुभ के साथ में मथुरा में पहुंचे संत उनकी प्रतीक्षा कर रहा था नंद बाबा अपन पर सभाओं को लेकर के पिताम मंगल इत्यादि को लेकर के उनसे पहले ही पहुंच गए जब जितना उन्होंने मथुरा वृंदावन से यात्रा की नंद गांव से कृष्णापुर के रथ में सवार हो चुके थे किंतु गोपियों ने उनको रोक लिया काफी समय उसमें लग गया टेढ़ी टेढ़ी रास्तों से राजमार्ग से नहीं आ सकते बंद इधर उधर से होकर के होते हैं और अपूर्व घाट में रास्ते में जो वृंदावन के अनुसरा के बीच में पड़ता है वहीं पर थोड़ा सा आंधी करने के लिए शाम हो गई वहां पर कुछ करने लगे संध्या रथ पर कृष्ण को बलदेव को बैठा दिया और बैठा करके स्वयं रथ में ब्रह्म रथ में यमुना के पास ही में लगा हुआ ब्रह्म रथ था उसमें स्नान कर ले जमीन में डुबकी लगाई तो नहीं देखा कि कृष्ण बलदेव तो हमारे पास में है पति कृष्ण बलदेव हमारे पास में यहाँ पर पानी नहीं कैसे आ गए और उसका मैं देखा तो रथ पर वो बैठे हुए हैं तात्पर्य क्या है जिस समय कृष्ण को लेकर के वसुदेव महाराज जी मथुरा के रूप में लेकर के जा रहे थे गोकुल में उसी समय यमुना जी कृष्ण का चरणों का कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए ऊपर में उतरी और उसी बीचों बीच में उधर में ब्रज और इधर में मथुरा वहीं से अपना स्वरूप वसुदेव नंदन का यही पर रख लिए यही पर रख गए वो उधर नहीं गए वहां से यशोदा नंदन जो कृष्ण है वहां से आकर के वहीं से विकसित गए और वही जबकि अपूर्व ला रहे हैं नंद गांव से उनको तो वृंदावन का जहां वृंदावन की क्षमा जहां पर समाप्त हुई वहीं कृष्ण और बदले कौन कृष्ण यशोदा नंदन कृष्ण गोपी गोपियों के जो कृष्ण है राधाना वहीं पर यमुना के किनारे सीमा पर क्यों रह गए वृंदावन परिचर पार एक अंतर कृष्ण वृंदावन को छोड़कर कहीं एक पग भी नहीं जाते इसलिए वो नंदन नंदन यशोदा नंदन और राधा नाथ या गोपी का बस वहीं से वहीं पर अंतर ध्यान होकर के ब्रज में लौट गए और वसुदेव के जो पुत्र कृष्ण और बलदेव है वहां से उसी बारे से उस रथ में आप रह गए और उधर वाले लौट गए और इन्हीं को आप रूप लेकर के वहां से हमारे गोस्वामी ने इस प्रकार से इसका समाधान किया है नहीं तो शास्त्र झूठे हो गए जब कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके ऐसे आ गए और गीता में लिखा है और भी जब प्रसन्न नहीं तो हो गए मथुरा के लिए मथुरा को छोड़ करके कृष्ण नहीं जाते कौन नहीं जाते बसुदेव बसुदेव नंदन ये नहीं जाते देवकी नंदन नहीं जाते इसलिए ये यहाँ से यहाँ पर लौट आए हम लोगों ने नहीं देखा लोगों ने नहीं देखा जो ऐसे भगवान के तत्व को जानने वाले हैं उन लोगों ने सीखा अब उसी अप्रू जी वहीं से स्नान करने के बाद में फिर कृष्ण को बलदेव को लेकर के जब तक पहुंचे इसके पहले ही नंद बाबा सभाओं को लेकर के महापुर पहुंचे और यमुना के किनारे उपवन में अंबिका स्थान में यहाँ का अंबिका जी का मंदिर है उसी के आसपास में मथुरा पहले उधर ही थी इधर नहीं वहीं पर उन्होंने पड़ाव डाल दिया वृक्षों के तले तब तक स्नान हो गई है कृष्ण तब तक पहुंचे और बलदेव जी अपूर्व के साथ अपूर्व को उन्होंने प्रणाम किया और बोले कि आप चलिए हम यहीं पर रहेंगे और कल सवेरे या आज शाम को हम मथुरा दर्शन करने के लिए चलेंगे और कल हम यज्ञ में हम लोग वहां पर दर्शन करने के लिए जाएंगे ये सब करके अक्रूर को उन्होंने भेज दिया। यहीं पर पासी में हम लोगों के नाले के पास में अक्रूर जी का फोन मिलता है, जो जानते हैं उन्हें परिक्रमा में जाते हैं वही पास, और उसके इधर में कुर्जा जी का वो मंदिर है, उधर में सुदामा मालिक का है, उधर में कुर्जा के जहाँ दर्शन हुआ था ये सबके स्थान सब हैं। तो कृष्ण जब कि वहां पर पहुंचे, नंद बाबा जी ने उनको भले से लगा दिया। कृष्ण ने कहा कि मैं थोड़ा सा मथुरापुरी को दर्शन कराऊं, वहीं से कथाओं को लेकर के बलदेव जी को आगे लेकर के चले। मथुरा में चारों तरफ में वो हल्ला हो गया, वसुदेव महाराज के दोनों लड़के यहाँ पर आ रहे हैं, अभी मथुरापुरी में घूमेंगे दर्शन करेंगे, और कब सवेरे संगत स्थली में जो यही पर पास है इसमें हो जाएंगे दर्शन करेंगे। ऐसा कर करके सब कथाओं को साफ किया जाए। चलते चलते पासी में वहां पर भोगियों का घाट है, कृष्ण गंगा के पास ही में उधर में, यहाँ पर सरस्वती के धारा में ही है, और सरस्वती की धारा तो आजकल तो बंद हो गई है, बरसात में थोड़ी थोड़ी सी देख रही है, उसी जगह व्यास जी का जन्म स्थान है, इसलिए उसको कृष्ण गंगा कहते हैं। भोगी लोग कपड़े लेकर के जा रहे थे, कृष्ण ने देखा, बलदेव जी ने देखा, अरे भोगी से कहा, अरे ये कपड़े कहाँ ले जा रहा है? कंस महाराज जी के लिए जा रहा है, ये कपड़ों हम लोगों को देगा? अजय कुमारिया गाय भैंस चराने वाले, और ये राजा का कपड़ा पहने का? फिर से कहा तो तुम्हारी जीभ काट देंगे, और अभी कंस महाराज जी को कहीं तुम्हें दूर पकड़ देगा। अच्छी बात, ऐसा कर करके गए, और भूमि को पकड़ करके उसका ऊपर से गला हाथी से लगाया उसका सत्य, और सारे कपड़े बच्चों ने जो जो सखाते सब लोगों ने लूट लिए। कृष्ण ने उनका श्यामल शरीर है इसलिए पीले कपड़े बड़े सुंदर सुंदर उले, तो कंस महाराज का कपड़ा नया भी जा रहा था धुलाई करके रंग करके, तो कृष्ण के लिए तो वो बड़े हो जाएंगे, सखाओं के लिए बड़े हो जाएंगे। उन्होंने अपने यहाँ पर भी मदमत कहो करके अपने कंधों पर रख लिया और कपड़ों को लेकर के चल गए। आगे देखा जाए एक सुदामा दर्जी है या मारी है, उदा दर्जी के पास में गए, क्या हम लोग कपड़ों को हमारे शरीर का फपने लायक उतना ही सुंदर कटिंग करके ठीक कर देगा? उनके तरफ में देखता ही रह गया और हाथ जोड़ करके कृष्ण को बलदेव को अच्छे अच्छे कपड़ों से देख करके सुंदर सुंदर उसने उनको सजा दिया, सखाओं को भी सजा दिया। अब तो कृष्ण फपने लगे, आए थोड़े देर में करे तो मानी मिला, काका तीनों को क्या करते गए, मुक्ति देते गए, अपनी भक्ति देते गए। सुदाम हमारी इसको देख करके वो माल हमारा ले जा रहा था कंस के लिए, अजय ये महाराज हमें दे देगा तो क्यों नहीं देते? ऐसा कर करके सुंदर सुंदर मालाओं से हारों से कृष्ण को सजा, कपड़े सुंदर सुंदर हो गए और इधर मालाओं से सजा दिया। इतने में कोई कुब्जा बड़ी सुंदरी की तीन टेढ़ी कुबर निकला हुआ, इधर इधर निकला हुआ, उधर में कुछ कुबड़ी कमर में, और सुंदर 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 आग बना करके महाराज कंस के लिए ले जा रहे। कृष्ण ने देखते ही उनके सखा उसको हंसने लगे, उसे देख करके कृष्ण ने कहा सुंदरी तू किसके लिए ले जा रही है? उसने ऐसे देखा कि हमको चिढ़ा रहा है, हमको सुंदरी कह रहा है, तो उसके तरफ में देखा किंतु देखते ही एकदम लुप्त हो गए। होने पर एकदम उसका चित्त कृष्ण ने चुरा दिए और वो खड़े ही खड़े रह गए, जैसे ये सुंदर अंगराग हमें लगा करके हमें सजा देगी, और ये आप लोगों जैसा पुरुष कौन है दूसरा जो कि इससे सजाऊ, आज मेरा परम सौभाग्य होगा जिस तुम्हें सजा। कृष्ण का श्याम रंग उस पर कैसा तिलक होना चाहिए, कुछ पीला रंग के सजा रंग थे वैसे ही बनाई, अब बड़े सुंदर हाथों से उन्होंने उसका श्रृंगार कर दिया, अंगराग हल्का जैसा तिलक होता है कृष्ण को ऊपर दे, बलदेव को कैसा लगा होगा उनका बहुत गर्व है, उनका कुछ और तरह के रंग तेसर के सुंदर एकदम फटने लगे अत्यंत किशोर रूप और अत्यंत सुंदर। उसने उनके कृष्ण के कपड़े पकड़ लिए, मुस्कुराने लगे। कृष्ण का जब ठीक बस उन्होंने एक ऊपर पर हाथ दिया और दूसरे हाथ से यहां पर और एक हाथ से धक्का दिया परम सुंदरी। वो देखते देखते एकदम मग्न हो गए। कृष्ण ने कहा ठीक है मैं तुमसे पीछे मिलूंगा, अभी मुझे बहुत से काम करना है। पुत्र ने पुत्र से सुन लिया
अभी श्रीमद् भागवत के प्रसंग में श्रीमद् भागवत का अत्यंत गूढ़ और रहस्यपूर्ण अभी भाग चल रहा है। साधारण भागवत सप्ताहों में ये सब चीजों की वर्णना नहीं लोग करते, वो लोग अत्यंत गुड़ रहस्यों को जिसको हम लोगों के आचार्य ने शिष्य चंद महाप्रभु गुरु सनातन के अनुगत में बड़ी सुंदर भावनाएं व्यक्त की है और कहीं नहीं। और विशेष करके वो संस्कृत टीका में है इसलिए दूसरे संप्रदाय के लोग उसको जानते हैं। इसलिए हम लोगों ने अपने गुरु वर्गों से इसके संबंध में जो नहीं सुनाई पड़ता है ये सब सुंदर सुंदर भाव गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के हैं टीकाओं में जो श्रीमद् भागवत में है। जिनके साथ धारण पाठक लोग शुभानंद ब्रह्मचारी जी ने अभी तक जो सब भागवत टीका के रहस्यों को प्रकाश किया ये कहीं भी दूसरी जगह संभव कर नहीं। इन्होंने अब तक उद्धव जी ब्रज में आए, नंद बाबा से मिले जो सुधा मैया से मिले, नंद बाबा से मिले। आप लोगों ने सुना नंद बाबा के कैसे सुंदर सुंदर भाव हैं और नंद बाबा से भी अधिक जिस यशोदा जी ने वास्तविक स्नेह है उनका उद्धव जी वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सके या भागवत में नहीं वर्णन किया, बस नंद बाबा का आसन करके भी चुप रहे और यशोदा मैया चुपचाप आंख बंद करके कुछ अर्थ विक्षिप्त अवस्था में प्रसून रही है उन भावों से जो उद्धव और कृष्ण से बातचीत हुई। तपस्या रात सारी हो गई, उद्धव जी सवेरे निशा के अंत में कृष्ण कुंड में जो वर्तमान अभी है उस कुंड में स्नान करने के लिए गए। कुंड में स्नान करके देखा कि बड़ा सारी गंभीर वन है, उसमें कदम्ब की खंडी है, कदम्ब खंडी अब वो बबुल के पेड़ों के रूप में बदल गए। कलयुग आया ये कदम खंड में घना घोर जंगल है और उसमें गोपियां हैं, बस दूर से उनको नमस्कार किया और उधर में प्रवेश किया। उन्होंने जाकर के देखा गोपियां उनके तरफ में देखने लगी तो कि ये कौन यहां पर आया, आज तक तो कोई आया नहीं, ये कौन है भाई, ये तो मालूम पड़ता है कि कोई राजपुरुष है, केवल राजनी पुरुष नहीं बल्कि ये तो कृष्ण के ही कपड़ों को और कृष्ण के ही वनमाला इत्यादि को धारण करके, पीताम्बर इत्यादि को धारण करके लिया है। इसे मालूम पड़ता है कि ये कृष्ण का ही थी। क्यों आया, आने का कारण क्या है, अपूर्व पहले आया और हम लोगों के कृष्ण को लेकर के ब्रज में चला गया। अब उसका जरूरत क्या है यहाँ आने की, या कृष्ण को जरूरत क्या है वहां पर भेजने की, या ये दूध क्यों आया। एक दूसरी सखी बोल रही है कि तुम जानती नहीं है कंस को मारा गया, अब कंस का प्रेक्षात्मा होना है 12वीं या 13वीं और उसमें पिंड दिया जाना बाकी है, तो पिंड मथुरा में नहीं मिल रहा, इसलिए कंस के घर वालों ने सोचा होगा कि वृंदावन में कहो पिंड मिल जाएगा। वो कहता गलत पिंड मिल जाएगा, गोप और गोपियां कृष्ण के किरण में तड़पती हुई मर रही होंगी, पर उनके हृदय से निकाल करके ले आएंगे पिंड और कंस की चेहरे में वो पिंड मिले, शायद किसी लिए आया होकर सुन करके बड़े दुखी थे। हमको इस तरह से आना उचित नहीं हुआ। मैं क्यों यहाँ की शुरू किया, राजपूत का देश बनाकर इतने दूसरी सखी का किया तुम नहीं जानती है। एक दूसरी बात भी है, ये अपने दूध को भेजा है, ये जरूर उन्हीं का है, देखने में श्याम ही है किंतु श्याम नहीं है, श्याम जैसा ही है, उद्धव स्थिर कृष्ण के जैसे ही देखने में थे, वैसे ही बनाओ, ऐसे ही सुंदर, इतने ही ऊंचे, उतने ही लंबाई, उतने ही चौड़ाई, बड़ी सुंदर कृष्ण के समान। वो गोपियां जो तमाल वृक्ष को कृष्ण समझ करके और अभिनंदन करती हैं, आज किंतु उद्धव कृष्ण जैसे अनुरूप और मनुष्य को भी देख करके वो भ्रमित नहीं थी, वो उनका अभिनंदन नहीं किया है। अरे जरूर ये कृष्ण का दुख है, क्यों दुख है, हमारी ना गलत निर्णय नहीं ले सकते, कृष्ण बहुत दिन हमारे साथ में थे इसलिए हमारी नाकें उनके गंध को पहचानती हैं, इसलिए ये माला जो है ये वनमाला कृष्ण की ही वनमाला है और ये कपड़े भी उन्हीं के हैं, ये दूसरे का नहीं, इसलिए कृष्ण के जो बहुत प्यारा कोई व्यक्ति होगा वही कृष्ण उसको दिए होंगे, इसलिए उनको धारण करके लिए आया है और साथ साथ में सोने के उसके हार हैं, सोने का मुकुट उसका है और बड़े बड़े देश के भी उसके कपड़े हैं, ये जो धारण करके आया जानते हो किस लिए, ये अपना ऐश्वर्य दिखलाने के लिए भेजा है। यहाँ तो गऊओं को चराते थे केवल, अब वहां पर मथुरा के राजा बन गए हैं, इसलिए वैभव के मालिक हो गए हैं, जो माता पिता कभी सोना नहीं देखा उसको सोना हमारा नौकर पहन करके जा रहा है मैया को के पास में और बाबा के पास में पिता के पास में दिखलाने के लिए, देखो मैं कितना ऊंचा हो गया, मथुरा का राजा बन गया, जो हमारा नौकर क्या कर दी सोने के आभूषण पर कहेंगे दिखलाने के। उद्धव जी ने कहा कि भाई छुट्टी सब पट जाए और इसमें समाज आऊ इतना दुख नहीं सहा जाए, मैं क्यों भी सोने के आभूषण पहन करके इनको सांत्वना देने के लिए आया, सांत्वना देने के लिए ऐसे ही आना चाहिए जिसके देश उठाते हैं, जिसको सांत्वना दिया जाना वाला है उसको सांत्वना मिल जाए, और यह तो देखते हैं कि उल्टा रहा है, एक गरीब राजी प्रधानमंत्री बन गया, वो अपने गांव में ठाट बाट से जाता है दिखलाने के लिए गाँव वालों को, और अपने माँ बाप को देखो मैं क्या हो गया, शक्र से ये दिखलाने के लिए मानो मुझे किस देश में नहीं आना चाहिए था, अपने को धिक्कार देने गोपियां निकट में गई, आप तो श्याम सुंदर के संदेश बाहर किसने भेजा, किसको संदेश भेजना है, संदेश किसके लिए, ओ माता पिता के लिए, आदमी सब कुछ बोल सकता है, अभिषेक करके हम लोगों से तो कृष्ण का कोई संबंध नहीं था, वो मानने के ऊपर में है, हम तो उनकी विवाहिता पत्नियां नहीं है, उनकी बहनें नहीं है, उनकी कोई गांव के संबंध से कुछ लगने वाली नहीं है,
इसलिए हम लोगों के लिए नहीं, अपने माता पिता को विशेष करके सभी पुरुष होने पर भी माता पिता का संबंध त्याग नहीं किया जाता। क्यों? अरे रगड़ में माता पिता का ही रक्त दूध के रूप में उसमें है, पुत्र का अपने कुछ नहीं है, यह शरीर ये माता पिता का दिया हुआ शरीर है, इसलिए सबको भूल करने पड़ती है। माता जी को और पिताजी को कैसे ही भूल सकता है, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को सांत्वना देने के लिए भेजा था, परंतु ये शायद रास्ता भूल गया, इसलिए कहीं ये रास्ता यहाँ का नहीं है, राजमार्ग का अब तुम्हारी माता और पिता का रास्ता है उधर में है, उधर से जाओ, इधर में तुम भूल करके आए। उधर भी बड़े और भी ये हमें ताना मार रहे हैं, इधर में हुआ क्या, कृष्ण है मथुरा किंतु चित्त कहाँ है, विशेष करके कुछ अनमने से हुए थे संदेशनी के वहां जाने पर, वहां से लौट करके आए तो जब उद्धव को भेजा तो उद्धव के साथ में उनका पूरा मन भी धर्म ब्रज में चला। अच्छा उद्धव जाता है वहां क्या करता है, माता पिता से कैसे मिल रहा होगा, हमारी प्रियस्थियों से कैसे मिल रहा होगा, ये सब पर विचार एकदम तन्मय होकर के जड़ होकर के वहीं पर बैठे हुए तन्मय, जैसे माता अपने पुत्र को कहीं पर भेजा, जिस समय सुभद्रा ने अपने वीर पुत्र अभिमन्यु को युद्ध में भेजा होगा और उनकी पत्नी सुभद्रा जी की अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अपने पति को सेंदूर नहीं उनका अभिवादन करके और गले में माला दे करके भेज रही होगी, तो भेज करके निश्चिंत हो गई होगी ना कुछ और होगा,
उनके साथ मन चला गया,
मन साथ में चला, कैसे युद्ध कर रहा है, कैसे अब जल्दी से कब से लौट करके आएगा कि नहीं लौटेगा, सब समय भावना हो गई है जैसे नहीं लौटेगा। उसी तरह से कृष्ण वहां पर बैठे हैं मथुरा में और चिंता कर रहे हैं, तो सचमुच में चिंता करते करते वो भ्रमर बन गए और भ्रमर बन के वहीं से उठे और उड़ करके ये देख रहे हैं कि उद्धव वहां गया तो गोपियों के समाज में क्या कर रहा है, इस चीज को देख रहा है, उसे रहा नहीं, इसलिए वो भ्रमर कोई दूसरा नहीं था बल्कि कौन था, श्री कृष्ण, तो वो देखने के लिए वहां पर आ रहे हैं। वहां गए तो देखा क्या, उद्धव जबकि प्रवेश किया तो गोपियों ने उनको बड़ी मुश्किल से लेकर के जहां भीतर में राधा जी थी अंदर में वहां पर देखा, बहुत दूर से देखा एक सोने की पतली दुबली कोई किशोरी फूलों की सज्जा पर, कमल के फूलों की सज्जा पर सो रही, मर रही है कि जीवित है कोई निश्चय नहीं कर, श्वास बहुत धीरे धीरे चलते हैं। गोपियां कुछ रुई का सहारा लिया और देख रही हैं कि वो जीवित है कि मर गए, देखा जो थोड़ी थोड़ी सांस और उसने कृष्ण कृष्ण श्याम श्याम नाम ले रही, फटक उचक करके वो बैठी, देखा था ये एक काला का भ्रमर उनके पैरों के चारों तरफ से मंडरा रहा है, गुंजार कर रहा है, जब गुंजार करने लगा उन्होंने पैरों को उधर से खींच लिया, अरे तू कहां से आ गया, कहां से आया, मधुपति सब बंधो मास की सामग्री तू क्यों आए, कहां से आए, तुमको आने की क्या जरूरत है, क्यों, उन्होंने कहा ध्यायंती कृष्ण संगमम, ये जो श्रीमती राधिका जी कुछ उसमें पड़ी हुई चिंता कर रही, कहा उनका कृष्ण का मन है कहां ब्रज में और राधा जी का मन कहां है मथुरा में कृष्ण के पास में, उन्होंने ध्यान किया, देखा कि कृष्ण का कभी चोरियों के अतिरिक्त चल नहीं सकता एक मिनट, इसलिए वहां की जो राजकुमारियां होंगी किशोरियां होंगी उन्हीं के साथ में कहीं हो रहे हैं, उन्होंने मन मन ध्यान किया आगे कृष्ण उनके बीच में बैठे हैं और कोई एक रुष्ट हो रही है वो मना रहे हैं, ध्यान करते हैं का और मान तीव्र हो गया, मान में विरह में
दुख होता है, किंतु उनको गृह में क्रोध जैसा ये मान उत्पन्न हो गया है, जो वहां पर मथुरा की चिंता कर नेतृत्व किसी से मिल रहे हैं और उनको मना रहे हैं। इधर न देखा जी फौरा मर रहा है, ये कृष्ण स्वयं वहां पर उनके चरणों में मनोकमल का फूल हो और उसके अंदर में प्रवेश कर जाए। दादा जी कहे तो कहो मध्यम अस्वस्थ और अपवित्र, तुमको यहां आने की जरूरत नहीं, हमारा पैर मत छुओ, मांस की सामग्री मेरे चरणों को मत छुओ। तू नेता श्रीमती जी मैं अपवित्र कैसे हो गया, आप अनुमान कर रही मैं तो पवित्र हूं, तो तू अपवित्र नहीं समझता है कि कैसे है। मदिरा पान करके आया है मधुशाला से, मधुशाला कौन है ये मथुरा, मधुशाला मदिरा की दुकान, यहाँ पर थोड़ी देर के जाएंगे ना तो वो पुल के पहले ही मधुशाला मिलेगी या घर मिलेगी, तो तू वहां से आया है। मधुशाला का जो मालिक है वो मधुपान करके सब समय मत्सर रहता है, उसको भी होश नहीं अपवित्र, और वहां से तुम मधुपान करके यहाँ आया, कैसे आप कह रहे हैं मैं तो अपवित्र नहीं। तो ये चलने का ढंग और बातचीत करने का ढंग मनाने का ढंग ऐसा ही है। अरे तुम अपने गोफों पर क्या लगा करके आया, गुल्फों पर ये तो तुम कहां से पाया बतला, तो सच सच बतला कहां से तुम सुना, मानो भ्रमर बन बन करता है। श्रीमती जी ये कुमकुम नहीं है, ये तो मैं फूलों पर बैठा था, फूलों का पराग है, मैं जहां पर बैठता हूं वहां से लग गया और स्वाभाविक इच्छा ऐसा, इसलिए आप परीक्षा क्यों कर रही है जो मैं मधुशाला से मधुपान करके आया, तो तू मधुशाला से मधुपान नहीं किया नहीं आता इस प्रकार से तू क्यों आया, तुम उधर ही रहो खबरदार हमारा पैर मत छुओ, पैर हटा दिया सबको, तुमको ऐसे ही धूप मानने लगी भ्रमर को और सारी बातें प्रारंभ की और इधर की सब उनको याद आ गई। विरह कहते हैं किसको, विरह माने एक तो होता है अलग अलग रहने और एक होता है विशेष रूप में भी रह माने उसके साथ में मिलन, अब उसको उदाहरण के द्वारा समझो, पिताजी बैठी है लंका में अशोक वाटिका की, रिमझिम बरसा हो रही, उनके ऊपर में बरसा का पानी नहीं लगेगा, क्यों अनुसुईया जी का दिया हुआ वस्त्र और अंगर आ गया, किंतु बरसा तो हो ही रही है, अकेले हैं, दूतियां कुछ दूर पर बैठे हैं, रामचंद्र कहां बैठे हैं ऋषि पर्वत पर, वहां पर लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, रामचंद्र जी के आंखों से भी पानी आ रहा है और वहां पर भी रिमझिम वर्षा हो रही है, ये वर्षा का दिन था, राम कहां देख रहे हैं सीता कहां है कैसे हमारे लिए, और सीता जी क्या देख रही हैं राम के समय, देखा क्या अपना सबसे स्वर्णिम दिन देखा, सुनहला दिन देख रहे हैं। रामचंद्र जी विश्वामित्र जी और ऋषियों के साथ में जनकपुर में प्रवेश किया है, सब नर नारियों को देख करके मुक्त हैं, सीता जी का युग पर यही है, इसी से विवाह महाराज जनक अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। इस तरह से बात चर्चा हो रही है, सवेरे रामचंद्र जी अपने गुरु जी के लिए पुष्प चयन करने के लिए गए बगीचे में फुलवाड़ी में और सीता जी से आंखें चार हुई, रामचंद्र जी ने उनको देखा, उन्होंने उनको देखा और तो एक दूसरे के इसी समय हो गए। रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण भाई आज तो मैंने बहुत अधर्म कहा, हमारे इच्छाकु कुल में कोई भी व्यक्ति स्त्रियों को इस तरह से नहीं देखता, हमारे अंदर में कामना पैदा होगी, अब तो मुझे मरना ही नहीं, नहीं भाई ऐसा नहीं, हम लोग के कुल में तो धर्म प्रवेश अधर्म प्रवेश नहीं कर सकता, मैं जान समझ रहा हूं कि ये शादी जरूरी होगी क्योंकि तुम्हारे अंदर में ये काम है, ये विफल नहीं होगा और तुम अधार्मिक नहीं हो सकते। थोड़ी देर के बाद में
विश्वामित्र जी उन दोनों भाइयों को लेकर के यज्ञशाला में पहुंचे और उनका आदेश लेकर के रामचंद्र जी ने क्षण मात्र में धनुष उठाया। कब टूटा, कब सप्त हुआ, कब क्या हुआ किसी को पता नहीं। सीताजी आनंद के मारे थर गई। नक्षत्र तक उनको बत्ती साधारण और कितने प्रकार के आभूषण इत्यादि से भर दिया गया, थोड़ा श्रृंगार से सखियां उनको लेकर के चल रही है। जब धनुष को उठा करके दीपा तो उस समय तो कोई सखी ने सहाय नहीं किया, सहारा नहीं दिया है? जिसको 10,000 को रावण और बाणासुर भी उठा नहीं सका, उसके लिए तो इतना बल है। आज वो खड़ी होकर के सीधी उसमें चल नहीं सकती, कुछ इस प्रकार से हो गई और सबके उन्हें सहारा देकर के उनका हाथ लेकर के राम की चरण चल गया। इस चीज के लिए ये भाग क्यों हो गया, वो राम का जो प्रेम था उनके अंदर में आकर के उनको इस प्रकार से कर दिया और वो चलने में असमर्थ हो गई, गदगद हो गई आनंद से। बैठी कहाँ है और सोच कहाँ रही है, आज से कितने वर्ष, 13 वर्ष की पहले की बात को ये याद कर रहे हैं। जिसमें ये याद कर रही है उस समय उनके हृदय में आनंद होगा कि दुख होगा, अभी बाह्य स्मृति नहीं है, अंदर अंदर की स्मृति है, तो उसमें कितना आनंद हो रहा होगा, सब कुछ भूल गई है? देखा जैसे इसके बाद में सखियों ने मरमाना के लिए डालने के लिए कहा, हाँ अपने सुंदर गजरा सुगंधी सखियां सब गान गा कर रही है, महाराज तक ये दशरथ ये जनक जी और सुनैना इत्यादि बड़े प्रेम से उनके तरफ में देख रहे हैं। ऐसा दृश्य उनके जन्म उनके जीवन काल में यही सर्वोत्तम अब वर्माला डालने के लिए जब हाथ नहीं उठा सकी, रामचंद्र जी भी मुस्कुराने लगे और सखियों ने उनके हाथ को उठाया।